सूरत बनी इसराइल, आयत नंबर 82। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वनुनज्जिलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउन व रहमा, शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। फरमाया, और हम इस कुरान की तंजील के सिलसिले में जो कुछ नाजिल कर रहे हैं, जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा किसी और चीज में इजाफा नहीं करता। अब आप देखिए कि पिछली आयत में आपने पढ़ा कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है, और हक जो है इसका कहां से पता चलता है? कुरान से। कुरान क्या है? पीछे आपने पढ़ा कि कुरान जिस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, वो रास्ता जो है वो अक्वम है, वो सबसे बेहतर है, मोतदिल है, अफरात और तफरीत से पाक है, और अहले मक्का कुरान को झुठलाते थे। अब यहाँ पे उन पर इजहार अफसोस किया जा रहा है, उन पर मलामत की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, वनुनज्जिलु, और हम नाजिल करते हैं और हम उतारते हैं, मिनल कुरानी, कुरान में से, के कुरान में अल्लाह के जो अहकामात नाजिल होते हैं, जो आयात और सूरतें नाजिल होती हैं, वो क्या है? नहीं वो शिफाउन मगर शिफा है। फरमाया, मा हुआ शिफाउन, वो जो शिफा है, व रहमतुन, और रहमत है। अच्छा, शिफा किसके लिए है? जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और रूहानी बीमारियों के लिए भी कुरान शिफा है। व रहमतुन, और रहमत है, लिल मुमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए। तो जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, इसे कबूल करते हैं, तो उनके लिए कुरान जो है वो शिफा भी है और रहमत भी है। आपने जब सूरत फातिहा को पढ़ा था, तो वहां आपने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो है वो इलाज भी किया था कुरान पढ़कर, क्योंकि किसी बस्ती के सरदार को बिच्छू ने काट लिया था, और सहाबी थे हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, और उनके साथ कुछ और सहाबी थे, वो सफर पर गए हुए थे, और उन्होंने कुरान पढ़कर जो है वो उनकी बीमारी का इलाज किया था। तो कुरान जो है इससे शिफा मिलती है, तमाम कल्बी और जिस्मानी बीमारियों से मुकम्मल शिफा मिलती है, इसलिए कि प्यारी बहनों, ये अल्लाह ने फरमाया है और अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। सर दर्द हो रहा है, कोई दर्द है, परेशानी है, तकलीफ है, तो कुरान की जो है वो तिलावत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फहमे कुरान की जो दुआ सिखाई है, वो आप याद कर सकती हैं। तो उसमें भी जो है वो जितने भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनका इलाज जो है वो कुरान को बताया गया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियति बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कदाउक अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुआ लक समैता बिही नफ्सक औ अंजलतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक अविस्तासरता बिही फी इल्मिल गैब इंदक أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي। तो इस दुआ में भी जो है वो यही बात मांगी गई है कि अल्लाह तू इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरी जो मेरे गम है उनको दूर करने का, मेरी जितनी परेशानियां हैं उनको हटाने का जरिया बना दे। तो यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि अहले मक्का, तुम कुरान का इनकार करते हो और कुरान ये ऐसी किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की है और ईमान लाने वालों के लिए इसमें शिफा है और उनके लिए कुरान रहमत है। तुम इसे मुसीबत समझते हो लेकिन उनके लिए कुरान जो है वो रहमत है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है इसे पढ़कर दम किया जा सकता है, इसे पढ़कर इलाज किया जा सकता है और जो लोग इस पर अमल करते हैं तो सारी मुश्किलात और परेशानियों का जो है, सारी मुसीबतों का जो है वो कुरान के जरिए जो है वो इलाज हो सकता है। वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और नहीं इजाफा होता जालिमों के लिए मगर खसारे में। तो यहां पर जो है ये हकीकत बताई जा रही है कि जो लोग कुरान का इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार करके वो अपने लिए नुकसान करते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो लोग कुरान पर अमल नहीं करते, इसे खोलते नहीं हैं, इससे अपनी जिंदगी के जहालत के अंधेरों को दूर नहीं करते तो दरअसल वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। वला यजीदु ज़ालिमीना, ये जालिम है और नहीं ये इजाफा करते अपने लिए मगर खसारे का। तो कुरान का झूठलाना इनके लिए महरूमी का जरिया बन जाता है। फिर इसके बाद फरमाया आयत नंबर 83 और 84, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान जो है इंसान के बारे में तारुफ करवाया है कि इंसान जो है वो उसकी आदत क्या है, इंसान की फितरत क्या है, वो करता क्या है। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की हालत को बयान किया है कि वो कितना जल्दबाज है, कितना नशुकरा है, उसकी अमली जिंदगी में क्या रविश होती है और हकीकत में उसकी रविश जो है वो क्या होनी चाहिए। और खास तौर पर यहाँ पे उस इंसान का जिक्र किया जा रहा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनकिर है, जो काफिर है, जो नूरे ईमान से महरूम है। ऐसा ही इंसान दरअसल अल्लाह का बड़ा नाशुकरा है। फरमाया वाइजा अन अमना अल इंसानी, कि जब हम इंसान को नेमत अता करते हैं, जब हम इंसान को नेमत देते हैं आरदा, तो उसकी पहली रविश क्या होती है कि वो मुंह फेर लेता है। मुंह फेरने से मुराद क्या है कि नेमते पाकर वो अल्लाह का नशुकरा होता है, नेमते लेकर नशुकरी करता है, अल्लाह को याद करना भूल जाता है। ये है उसकी पहली रविश कि नेमते पाकर उसे होना क्या चाहिए था, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए था, लेकिन नेमते पाकर वो अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ता है, करवट फेरता है। दूसरी उसकी रविश क्या है, वना आ बिजानिबी। यहाँ पे ना आ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूप है नून अलिफ या, और इसके मानी है तकब्बुर की वजह से किसी से परे होना, दूर रहना, रूगर्दानी करना। तो ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह की नेमतें पाकर जो है वो पीठ मोड़ लेता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ पे दो रविश है, पहली है आरादा, और आरादा जो है इसके माने क्या है, इसके माने ये हैं कि ऐसा इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम से मुंह मोड़ता है, कैसे, नफरत करता है, बेजारी का इजहार करता है। फिर दूसरी उसकी रविश क्या है, वना, और वो गुरूर के अंदाज में पहलू बदलता है, बेजानेब ही, जीम नून बा जो है ये जानेब और पहलू को कहते हैं, तो करवट फेर लेता है, मोंडे फेर लेता है। तो ये है इंसान का अजीब हाल कि नेमते पाकर उसको सर झुकाना चाहिए था लेकिन वो अकड़ने लगा और सरकशी करने लगा। देखे दरख्त पर जब फल लगता है तो दरख्त की शाखें झुक जाती हैं। इंसान का अजीब हाल है कि जब उसको नेमते मिलती हैं तो झुकने की बजाय वो अकड़ने लगता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय अल्लाह की अतात से मुनकिर हो जाता है, अल्लाह का इनकार करता है। वाइजा मस्सहु शर्रु, और जब उसे जो है वो मुसीबत पहुंचती है, काना यऊसा, तो मायूस होने लगता है। अब दूसरी उसकी हालत क्या है कि उधर जरा बीमारी आई, जॉब चली गई, कोई मुसीबत हो गई, बच्चों की कोई आजमाइश आ गई, खानदान के अंदर कोई आजमाइश आ गई, और जिंदगी जो है वो आजमाइश ही का नाम है, जिंदगी एक इम्तहान है, इम्तहान है जिंदगी। तो ऐसा नशुकरा इंसान तकलीफ के पहुंचने पर अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है। वैजा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, या हमजा सीन जो है इसके मानी है मायूस होना, तो अल्लाह की रहमत से ये बिल्कुल मायूस हो जाता है। फरमाया कुल, कह दीजिए, कुल यअमलु, के कुल जो है इसके मानी है हर, हर एक, यअमलु अमल करता है, अला शाह के लाते, अपने तरीके के मुताबिक। यहाँ पे शाह के लाते ही आपको एक बड़ा सा मुश्किल लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन है बड़ा आसान। आप इसका रूट निकालिए, शीन काफ लाम, और शीन काफ लाम जो है इसके मानी है शक्लो सूरत, तरीका, जहनी सांचा, सोच, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तौर तरीका, ढब ढंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर शख्स जो है वो अपनी सोच के मुताबिक अमल करता है, वो अपने तरीके, अपने रंग ढंग के मुताबिक अमल करता है। जैसे आप किसी को जाहिरी तौर पर देखती हैं तो आप कहती हैं कि उसकी शक्ल जो है वो कैसी है, और यहाँ पर बात हो रही है कि अमल की शेप कैसी है, अमल का ढंग क्या है, अमल की शक्ल कैसी है। इस सिलसिले में मैं आपको जो है वो दो मिसालें देती हूँ। जैसे एक शख्स है वो सदका खैरात करता है और वो एलानिया करता है, उसकी नीयत क्या है, वो चाहता है कि दूसरों को भी तरगीब हो और दूसरे लोग भी देखकर सदका करें। दूसरा शख्स है जो सदके को छुपा कर देता है, पोशीदा देता है, उसका मकसद ये होता है कि रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो। अब देखें कि दोनों की नीयत ठीक है, लेकिन तरीका और अंदाजे फिक्र अलग अलग है। तो ये है मानी कि हर शख्स जब अमल करता है तो उसका तौर तरीका अलग होता है, अपना होता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक दिन आप रात के वक्त निकले, आपने देखा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन तिलावत और किरात आहिस्ता आवाज में कर रहे थे, कुरान बहुत आहिस्ता पढ़ रहे थे। फिर आप थोड़ा और आगे चले, आपने उमर फारूक रजी अल्लाह को देखा, वो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे। अब जब दोनों नमाज से फारिग हुए तो आपने अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुम इतने आहिस्ता आहिस्ता किरात क्यों कर रहे थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब बहरा नहीं है कि मैं चिल्ला कर पढूं, और मैं जिससे बातें कर रहा था यानी अल्लाह से वो तो सुन रहा था ना। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप इतनी बुलंद आवाज से क्यों पढ़ रहे थे? कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान को भगाता था, भगाता हूँ, और सोने वालों को जगाता हूँ। आप रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ बताई, आपने दोनों की तारीफ की। अब आप देखें, पढ़ दोनों नमाज रहे हैं, अमल दोनों का मुख्तलिफ है, और असल बात क्या है कि नीयत दोनों की बड़ी अच्छी है, सोच का अंदाज अलग अलग है, इसी को शाकिला कहते हैं। और बाज उल्मा ने शाकिला लफ्ज के मानी जो है वो नीयत के भी लिए हैं कि नीयत। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है। फर्रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, अब ये तुम्हारा रब भी बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है वो आलमु अफलू के वजन पर है, सुपरलेटिव डिग्री है, ज्यादा इल्म रखने वाला। इसी तरह जो आहदा है, आहदा जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, और ज्यादा हदायत पर, लेकिन ये आपको आलमू या अफअलू के वजन पर नजर नहीं आ रहा अहदा। इसकी वजह यह है कि अरफे हरफे इल्लत जब आ जाता है ना, तो जो शेप होती है ना सुपरलेटिव डिग्री की, आराब का जो अंदाज होता है वो फर्क हो जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था खैर, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसी तरह आहदा ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ज्यादा हदायत वाला। यहाँ पे आपने दो जो है इसम तफजील पढ़े, आलमू और आहदा, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन जो है वो सीधी राह पर है। इसके मानी क्या है? दरअसल के हर शख्स अपने अपने तरीके पर अमल कर रहा है। मानी क्या है कि एक तरफ मोमिन है जो अमल करने वाले हैं, दूसरी तरफ काफिर है जो अमल करने वाले हैं। मोमिन अपनी नियत और अपने इल्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और काफिर अपनी अकल के मुताबिक अमल कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से ज्यादा ठीक और दुरुस्त रास्ते पर कौन है, ये अल्लाह खूब जानता है। फरबकुम आलमू बिमन हुआ अहदा सबीला, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन जो है वो सीधे रास्ते पर है, कौन जो है वो सिराते मुस्तकीम जो है वो उसको पाता है। इससे क्या बात पता चलती है कि जब भी कोई अमल किया जाए तो उसके अंदर इखलासे नीयत होनी चाहिए और हुस्ने अमल किया जाए, सही तरीका हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, और बुरी नीयत और बुरे आमाल जो हैं वो इंसान को के अमल को जाया कर देते हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 85 है, 85, बुखारी और मुस्लिम मुस्नद अहमद की रवायत है, रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो, कि यहूद मदीना ने रसूल अल्लाह से रूह के बारे में सवाल किया तो ये आयत नाजिल हुई। इब्ने इसहाक ने रवायत की कि यहूद मदीना ने कुरैश को कहला भेजा कि वो मोहम्मद से अहले कहफ, जुलकरनैन और रूह के बारे में पूछें, और अगर वो दो के बारे में बताएं और तीसरी चीज के बारे में खामोशी इख्तियार करें तो वो नबी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरत अल कहफ नाजिल की, जिसमें असहाबे कहफ और जुलकरनैन का वाकया है, और ये आयत नाजिल की जिसमें रूह का तذکرہ है। फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह, ये लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल पूछते हैं। कुल कह दीजिए अर रूह मिन अम्रे रब्बी, ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। रूह जो है इसके क्या मानी है? इसके एक मानी है अजीम फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसके दूसरे मानी है वो पोशीदा चीज जो पूरे जिस्म इंसानी में फैली हुई है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म जो है वो जिंदा रहता है। तो जिस्म के अंदर जो रूह होती है, दूसरे इसके ये मानी है। फिर आप देखिए कि रूह जो है इसके एक और मानी भी है, और रूह के मानी है कुरान वही। तो रूह के एक मानी वही के भी है, वही और कुरान के, और यहां पर जो है वो मानी वही या वही लाने वाला फरिश्ता है। ये लोग तुमसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं, कुल कह दीजिए अर रूह मिन अम्रे रब्बी, कि ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। तो रब के हुक्म से जो रूह आती है, तो इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि ये जो वही नाजिल होती है, ये जो फरिश्ता आता है, तो ये अल्लाह के हुक्म से आता है। जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म था, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए आते, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते और अल्लाह के हुक्म से वही का इल्म आप तक पहुंचाते। तो यहां इसके यही मानी है। फिर फरमाया वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही हिस्सा पाया है। यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि उनके पास जो था बहुत ही कम इल्म था, बहुत थोड़ा इल्म था। तो रूह की हकीकत का मालूम करना जो है उन्हें उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, उन्हें रूह की हकीकत समझ में भी नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो भी वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है तो वो अल्लाह के हुक्म से होती है और उनको इस हकीकत का कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन वो क्या करते थे, अहले मक्का जो थे वो एतराज करते थे, सवाल करते थे, और यहूदियों के सिखाने पर जो थे उनके सवाल होते थे ताकि जो है वो एतराज किया जा सके। तो यहाँ पे रूह से मुराद वही इलाही है। अब आप देखें कि जो वही इलाही है क्या है, कुरान है। जिस तरह इंसान के जिस्म की जिंदगी रूह के साथ है, इसी तरह इंसान की दिल की जिंदगी जो है वो वही इलाही के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि उस कलमे से जीता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो वो कलमा क्या है, अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल होती है। तो अहले मक्का कुरान के नजूल पर एतराज करते थे, वही के बारे में मजाक उड़ाते थे। अब ये नहीं है कि वो वही की हकीकत को समझना चाहते थे बल्कि वो मजाक करते थे। तो यहाँ पे जो है वो उनके इसी ज़हनियत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वही है ये अल्लाह के हुक्म से आती है, मिन अमरही मिन अमरीना, यानी इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। हर शख्स वही की हकीकत को समझ नहीं सकता। वमा ऊती तुम, और जो कुछ तुम्हें दिया गया है, मिनल इल्मी इल्मे से इल्ला कलीला, मगर वो बहुत थोड़ा है। वला इन शेना, और अगर हम चाहें ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें ला नज़हबन्ना, तो अलबत्ता जरूर हम ले जाएं। अब आप देखें कि ज़हाबा का मतलब होता है जाना, लेकिन ज़हाबा के बाद अगर बाकी प्रेपोजिशन आ जाए, हरफे जर आ जाए, तो मतलब होता है ले जाना। और यहाँ पे लनज़हबन्ना में दो ताकीद है, एक लाम लामे ताकीद है, एक नून पर शद है। लनज़हबन्ना, हम जरूर ब जरूर ले जाए, बिल्लज़ी साथ उस चीज के, औहैना इलैका, जो हमने वही के जरिए तुमको अता किया है। तो यहाँ पर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग जो आपसे रूह की हकीकत पूछते हैं तो रूह की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान जो सब मौजजों में से बड़ा मौजजा है, कुरान जो के अल्लाह का कलाम है, और यहाँ पर जो है इसी की हकीकत को सामने लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि असल बात यह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, और जो कुछ हमने आपकी तरफ वही की है अगर हम चाहें तो उसे ले जाएं। तुम ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर हमारे मुकाबले में आपको कोई मददगार भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी मदद करने वाला जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर असल में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि डांट का रुख आपकी तरफ है बल्कि उन लोगों की तरफ है जो मजाक उड़ाते थे और वही की हालत और कैफियत के बारे में सवाल पूछते थे। एक तरफ अल्लाह ताला ने कहा कि वही के नाजिल होने में तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तुम अपने इरादे से ना वही को ला सकते हो ना इसको रोक सकते हो। और फरमाया, अगर मैं चाहूं तो जो वही तुम पर नाजिल की है उसे भी मैं चाहूं तो वापस ले आऊं, कोई मना नहीं कर सकता, और अगर वही तुम पर नाजिल हुई है तो ये भी हमारा फजल है, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा जो है वो फजल है। इल्ला रहमत अमिर रब्बिक, और ये जो वही है दरअसल ये तुम्हारे रब की मेहरबानी है। इन्ना फजलहू काना अलैका कबीरा, क्योंकि आप पर अल्लाह का ये फजल बहुत बड़ा है। और यहां पर फजल से मुराद क्या है, वही के जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुरान नाजिल हुआ है, تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. تو دراصل کفار کو سنایا جا رہا ہے, کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر جو ہے سکھا پڑھا جاتا ہے, یا کہتے تھے کہ یہ کلام پیغمبر نے گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم نے عطا کیا ہے, پیغمبر کی طاقت نہیں کہ وہ ایسا کلام تصنیف کر کے لا سکے, نہ کسی اور کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایسی موزانہ کتاب کو پیش کر سکے. تو اس کو اتارنے والے بھی اللہ, اس کو نازل کرنے والے بھی اللہ, اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل ہوئی تو فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور جو ہے وہ جتنا اللہ نے چاہا آپ کو علم جو ہے وہ عطا کیا. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 88 ہے, اس میں جو ہے ایک سوال سامنے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, قل کہہ دیجئے, لئن اجتمعتی, کہ اگر یہ جمع ہو جائیں. اصل میں جیم میم عین جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونا, اور اجتماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مجتمع ہونا, اکٹھا ہونا. اگر وہ جمع ہو جائیں, کون؟ الانسو انسان, والجنو اور جن. اللہ یاتو بمثلی حاضا, کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائیں, بمثلی حاضل قرآن, اس جیسا قرآن بنا کر لے آئیں. پھر آپ دیکھ لیں عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور عطا کے بعد باقی پریپوزیشن آ جائے تو لانا. تو اگر یہ انسان اور جن سب جمع ہو کر اس قرآن جیسا بنا کر لے آئیں, لا یاتو نہ بمثلی, تو اس جیسا بنا کر نہ لا سکیں گے. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, اور اگر کے بعض ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں, اگر کہ وہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کر لیں. جیسے کفار یہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے اور اللہ کا کلام کر کے پیش کر رہے ہیں, تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن اپنی زبان, اپنے مضامین, اپنے دلائل, اپنی تعلیمات, اپنی غیب کی خبروں کے لحاظ سے بے نظیر ہے, کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. ایک انسان کا گھڑنا تو دور کی بات, تمام دنیا کے انسان اور جن مل کر بھی اس کتاب جیسی کتاب کو جو ہے وہ تصنیف نہیں کر سکتے. اور اہل مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, اگر وہ سب بھی مل کر کوشش کریں تو بھی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. تو ظہیرہ جو ہے ظہرن, ظہرن پیٹ کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ. یہاں پہ ظہیرہ کے فرمانی کیا ہے کہ کسی کی پشت پناہی کرنا, کسی کی مدد کرنا, مددگار بن جانا. تو یہ لوگ جو ہیں سب مل کر بھی کوشش کریں تو ایک دوسرے کی مدد کریں تو بھی قرآن جو ہے اس کو گھڑ نہیں سکتے. تو یہاں پر جو اہل مکہ کا جو اعتراض تھا کہ کہیں سے قرآن آپ سن سنا کر جو ہے وہ آگے پیش کر دیتے ہیں, اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 89 میں, 89 میں سورت بنی اسرائیل, اللہ رب العزت نے اظہار افسوس کیا ہے کہ کیسے نہ شکرے ہیں, قرآن جیسی نعمت عظما کی نہ قدری کر رہے ہیں. فرمایا, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, من کل مثالن, ہر طرح کی مثال دے کر طرح طرح سے سمجھایا. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, مگر جو ہے انہوں نے کیا کیا, فابا, پس انکار کیا. اکثر الناسی, اکثر لوگوں نے, زیادہ لوگوں نے, انہوں نے کیا کہا, اللہ کفورا, انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, ہم تیرا انکار کرتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور اہم حقیقت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے طرح طرح کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. صرفنا, स्वाद रा फा, उसका मतलब होता है फेर देना, जैसे किसी चीज का रुख जो है वो तब्दील किया जाए। तसरीफ के मानी होते हैं एक हकीकत को मुख्तलिफ तरीकों से पेश करना। ये लफ्ज तसरीफ फिर रियाह के लिए भी आया, हवाओं का अदलना बदलना, कभी एक रुख की हवा, कभी दो दूसरे रुख की हवा। जैसे मेरे पास पानी का इस वक्त गिलास है तो मैं उसको उल्टा कर दूं तो क्या है, रुख बदल दिया। तो सर्रफा युसर्रिफू का मतलब क्या होता है कि रुख बदल देना। तो अब यहां पर यह हकीकत बताई जा रही है कि हमने कुरान में लोगों को समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें दी। अब आप देखें ये अकीदा तौहीदी है तो तरह तरह से अल्लाह ताला ने समझाया, अकीदा आखिरत है तो वो भी तरह तरह से समझाया। अब तक आप कितनी मिसालें जो है वो पढ़ चुकी हैं, तो इस किताब के अंदर एक ही बात को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रंगा रंग की मिसालों का इस्तेमाल किया है। क्यों ऐसे किया? ताकि लोग जो है वो समझ सकें, ताकि लोग जो है वो इनकार कर सकें। तो दरअसल यहाँ पे ये बात जो है ये कुरान के मोजे के तौर पर जो है वो पेश की गई है कि कुरान मजीद जो है एक मोजा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही बात को तरह तरह से लोगों के सामने पेश किया है। मकसद क्या था? कि लोग समझ जाएं। जैसे एक टीचर है एक ही बात को बच्चों के सामने मुख्तलिफ तरीके से पेश करता है, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ दलाइल मजामीन आयात पैगामात अहकामात नाजिल किए हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मिसालों से लोगों के सामने पेश किया, लेकिन लोगों का हाल क्या है? फाअबा, फस अक उन्होंने इनकार किया। कितने लोगों ने? अक्सर उन्नासी, ज्यादा लोगों ने। इल्ला कुफूरा, फस वो कुफर करते गए। वकालू, और कहने लगे लन नोमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ। अब आप देखिए कि आयत नंबर 90 और 100, यानी आयत नंबर 90 से लेकर 100 तक कुफार की तरफ से बाज मोजात का मुतालबा और उनका जवाब दिया गया है, और हदायत और गुमराही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जो सुन्नत है उसको बयान किया है। आइए देखते हैं कि सारी बातों के बावजूद वो क्या कहते थे, जो इनकार करते थे वो किस तरह के मोजात का मुतालबा करते थे। फरमाया वकालू, और वो कहते हैं कौन? अहले मक्का इनकार करने वाले, लन नोमिना, हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे, लका तुझ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का कहते थे कि हम तेरी बात न मानेंगे, हम तुझ पर ईमान न लाएंगे, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ, जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे। अब आप देखिए कि यहां पर जो है यम्बुआ का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, और यम्बुआ जो है इसके मानी है, इसका रूट है नून बा ऐन, और इसके मानी है चश्मे के। तो वो कहते थे कि जब तक आप जो हैं जमीन को फाड़ कर हमारे लिए चश्मा ना जारी कर दें, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। एक उनका मुतालबा जो था वो ये था। दूसरा उनका मुतालबा था औ तकूना लका जन्नतुन, या तेरे लिए हो एक बाग। कैसा? मिन नखीलिन, खजूरों का। नखील का जो लफ्ज है ये बाग खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें खजूर के दरख्त जो हैं वो कसरत से हों। तो या तेरे लिए जो है वो खजूरों का एक बाग हो, एक खेती हो। वह इनबिन, और इनब लफ्ज जो है ये अंगूरों के लिए इस्तेमाल होता है, अंगूर की बेल को भी कहते हैं और अंगूर के फल को भी कहते हैं, और अंगूर का एक दाना जो है उसको इनाबतुन कहते हैं। उनका दूसरा मुतालबा ये था कि या तो आपके लिए खजूरों का दरख्त हो, या फिर खजूरों का एक बाग हो, या फिर अंगूरों का एक बाग हो, और वो होना कैसे चाहिए? फतु फजीर अल अनहारा खिलाला तफजीरा, फतु फजीरा, बस बहा निकाले अल अनहारा नहरों को, खिलाला दरमियान इसके, खा लाम लाम दरमियान के लिए आता है, जैसे दो उंगलियों के दरमियान को भी आप कहती है ना खिलाल किया, इसी तरह दांतों में कोई चीज दो दांतों में फंस जाती है तो आप खिलाल करती है ना, तो इसी तरह किसी की मोहब्बत दिल के अंदर घुस जाए तो उसको भी खलील कहा जाता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब था खलीलुल्लाह। तो अब उनका मुतालबा ये था कि जो खजूरों और अंगूरों का बाग हो तो उसके दरमियान में से नहरें बह रही होनी चाहिए, फतुफज्जिरा फाड़ कर निकाले, फज्जारा युफज्जिरु तफजीरन, फाड़ कर नहरें जो है वो जारी करना। और आपको पता ही है कि फजर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो फोके फूटने को कहते हैं, और इसी तरह जो है वो फाड़ना जारी करना उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरबों के यहाँ एक खूबसूरत बाग का जो तसव्वुर किया जाता था वो कैसा बाग था कि जिसके अंदर जो है वो फल लगे हुए हैं, खजूरें हैं, और साइडों पर जो है वो अंगूरों की बेलें हैं, और बीच में उनके अंदर जो है वो नहरें जारी हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो तस्दीक के तौर पर हमारे ये मुतालबात जो हैं वो पूरे कर दें। ये था उनका दूसरा मुतालबा। तीसरा उनका मुतालबा था, औ तुस्कित समा कमा जामता अलैना किसफन, औ तातिया बिल्लाही वल मलाइकति कबीला। तीसरा मुतालबा था या ये कि आप हम पर आसमान के कुछ टुकड़े गिरा दें। तुस्किता, तुस्किता का मतलब है कि गिरा दे, सकता होता है ना गिरना, तो तुस्किता गिरा दीजिए असमाई आसमान को, कमा जामता जैसा तू जो है वो कहा करता है, जैसा तेरा दावा है, या तू आसमान को हम पर गिरा दे जैसा तेरा दावा है। कैसे गिराना, किसाफन टुकड़े टुकड़े करके। तो यहाँ पे किसाफन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और आप देखें कि किसाफन का लफ्ज जो है ये टुकड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टुकड़े के लिए कुरान में आपने 10 लफ्ज पढ़े हैं, जैसे जुज है, पिता है, फिर बुका है, फिर दुबुर है, अनकास है, फिरका है, बाज है, मुख्तलिफ लफ्ज पढ़े हैं, और यहाँ पे किसफन है ये खास लफ्ज है, काफ सीन फा, इसकी आप वाहिद है किसफतुन, और काफ सीन फा ये जमा है, बादिल या रुई के टुकड़े को कहते हैं जो आसानी से अलहदा हो सकते हो और फिर जुड़ भी सकते हो। तो अब अहले मक्का ने ये मुतालबा किया कि या हम पर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर ऐसे गिरा दे जैसा का तेरा दावा है। क्या मतलब है कि हम तेरी नाफरमानी करते हैं और फिर हम नाफरमानी के नतीजे में तू आसमान को हम पर गिरा दे, यानी हम पर अजाब ले आ। फिर इसके बाद जो है अहले मक्का का एक और मुतालबा था, वो उनका क्या मुतालबा था, ये इनका जो है मुतालबा था कि औतातिया बिल्लाही वल मलाइकति कबीला, या अल्लाह और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आ। यहाँ पे कबीला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और काफ बा लाम जो होता है इसके मानी होते हैं सामने रूबरू, जैसे किबला है, नमाज आप पढ़ती हैं किबले की तरफ रुख करके, तो किबला कहाँ पे होता है, सामने होता है ना, तो अल कबील कबीला की जमा है, वो जमात जो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हो, एक दूसरे के सामने हो, कबील सामने को भी कहते हैं, इसी से किबला किसे भी आप याद कर सकती हैं। तो उनका फिर एक मुतालबा ये था, अल्लाह और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आ। फिर आप देखें कि अल्लाह कब आता है, फरिश्ते कब आते हैं? जब कयामत होगी और हिसाब किताब के लिए अल्लाह जो है वो सामने आएगा और फरिश्ते भी आएंगे ना। सूरत अल फजर में भी है, वजा रब्बू का वल मलाइकतु सफा वजी यौमइज़िन जहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। तो फरिश्ते कब आते हैं? अल्लाह के अज़ाब का फैसला लेकर। फरिश्ते कब आएंगे? जब कयामत आएगी, जब अल्लाह आएगा, अल्लाह का दरबार लगेगा, हिसाब किताब होगा। तो अब इनका एक ये मुतालबा था कि अच्छा, या फिर अल्लाह फरिश्तों को रू दरू हमारे सामने ला। वैसे तो अल्लाह फरिश्ते नजर नहीं आते ना, ये गैब के उमूर में से हैं। तो अब काफिर ये मुतालबा करने लगे कि अच्छा फिर ले आए इनको, गोया कि कयामत का मुतालबा था। फिर आयत नंबर 93 में आप देखें, फरमाया औ यकून लका बैतुन, या हो तेरे लिए एक घर, बिन जुखरुफिन, जुखरुफ का जे खा रा फा जुखरुफ, और ये सोने को भी जुखरुफ कहते हैं कि ये जो है जुखरुफ खूबसूरती का जरिया बनता है। इसके अलावा जुखरुफ लफ्ज जो है इससे मुराद वो जीनत होती है जो मुलम्मा कारी से हासिल होती है। जैसे किसी भी चीज की जिबाइश के लिए जुखरुफ का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी चीज का चमकना, किसी चीज का जो है वो उसका आराइश का होना, उसका खूबसूरत होना, तो उसके लिए भी जुखरुफ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जुखरुफ के फिर यहां पर क्या मानी है? सोने के, या हो तुम्हारे लिए एक घर और वो घर भी जुखरुफ का होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। अब आप जरा गौर करें कि अहले मक्का जो थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताते थे, कैसी कैसी बातें करते थे। तो जुखरुफ क्या है? जाहिरी सजावट, मुलम्मा साजी। जुखरुफुल कौली गुरूरा, आपने पीछे पढ़ा था ना, यूं ही बादहुम इला बादिन जुखरुफुल कौली गुरूरा। मुलम्मा मुलम्मा की भी जो बातें होती हैं, मुलम्मा साजी वाली बातें, उसके लिए भी आता है। ये पौधों के जो रंग होते हैं ना, खूबसूरत पौधों के जो रंग होते हैं, रूप होता है, जो बहार उस पर आई हुई होती है, उसको भी जुखरुफ कहा जाता है। इसी तरह सोने के लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने लगे तेरे लिए सोने का एक घर होना चाहिए, औ तरका फिस्समा, या तू आसमान पर चढ़ जाए। अब यहां पर जो है तरका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, रूट है रा काफ या, और इसके मानी होते हैं बुलंदी पर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। तो अब यहाँ पे ये एक और मुतालबा है कि या फिर आप जो हैं वो आसमान पर हमें चढ़कर दिखाएं, या आप जो हैं हमें बुलंदी पर चढ़कर दिखाएं। तो ये भी एक अनहोनी बात थी जो वो मुतालबा जो थे वो कर रहे थे। तो जब कोई बात न माननी हो, जब इनकार ही किसी की रविश बन जाए, तो फिर इस तरह के मुतालबे जो हैं वो हुआ ही करते हैं। और अहले मक्का के ये अजीबो गरीब मुतालबात थे, ये और ये सारे मुतालबात जो थे ये मोजे के लिए थे कि आप हमें कोई मोजा दिखाएंगे तो फिर हम आप पर जो है वो ईमान लाएंगे। फिर फरमाया वलन नोमिना, और हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, ये रुकैये का आपके चढ़ने का, कि अगर आप जो हैं आसमान पर चढ़ भी जाते हैं तब भी हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। कब तक? हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊ, जब तक तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। यानी जब आप आसमान पर चढ़ जाएं और वहां पे तब भी हम मानेंगे नहीं, चढ़ने के बाद फिर क्या करना? हमारे लिए आसमान से एक चिट्ठी लाना, एक लिखी हुई तहरीर लाना, तो फिर हम मानेंगे कि वाकई तो अल्लाह का रसूल है, और उस तहरीर में ये लिखा होना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से कि ये मेरा रसूल है और ए अहले मक्का तुम इस पर ईमान ले आओ। वलन नौमिना ले रुकय्ये का हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊह, कि आप हमारे लिए ऊपर जाकर एक ऐसी तहरीर लाएं जिसे हम पढ़ें, यानी हमारे नाम अल्लाह की तरफ से ये बात होनी चाहिए कि मेरा रसूल है इस पर ईमान ले आओ। कुल सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं। तो यहां पर जो है क्या बात बताई जा रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पैगंबर का काम जो है वो मोजात जो है मोजात दिखाना नहीं है, लोगों के मोजात का जो मुतालबा है उनको पूरा करना नहीं है। तो आयत नंबर 90 से लेकर अब आप देखें कि 93 तक उनके एक तरफ मोजात हैं, उनका मुतालबा है, और दूसरी तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लंबे चौड़े मुतालबों का बस एक मुख्तसिर सा जवाब दिया है, और वो क्या है, कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं। तो इसके माने क्या है कि मैं बस एक रसूल हूं, तुम्हारे जो मुजात का मुतालबा है मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। वमा मना नासा अन युमिनू इज्जा अहमुल हुदा इल्ला अन कालू अबासल्लाहु बशर रसूला। अब यहां पे आयत नंबर 94 में लोगों का हदायत से इनकार करना, इसकी वजह बताई जा रही है कि हर जमाने के जाहिल लोग जो थे उन्होंने रसूल का इनकार क्यों किया। वो ये कहते थे कि अल्लाह ने जो रसूल भेजा है ये इंसान क्यों है, अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर क्यों भेज दिया। वमा मना अन्नासा, और नहीं मना किया लोगों को अय्यो मिनू को वो ईमान ले आए, कब इज्जा अहमुल हुदा जब उनके पास हदायत आ गई, तो हदायत के आने के बाद ईमान लाने से लोगों को किस चीज ने रोका, इल्ला मगर नहीं मगर क्या चीज थी, अनकालू के उन्होंने कहा अबास अल्लाहू, क्या भेजा है अल्लाह ने, क्या मबूस किया है अल्लाह ने बशर रसूला बशर को रसूल बनाकर। कुल लौ काना फिल अर्दी मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। अब अल्लाह ताला ने इनकी जो बात थी उसका जवाब दिया है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए लौ काना फिल अर्दी मलाइकतुन, अगर जमीन में फरिश्ते रह रहे होते, फरिश्ते बस रहे होते, यमशूना वो चल रहे होते, मशा यमशी का मतलब होता है चलना, मीमशीन, या अगर जमीन में फरिश्ते रहते होते वो चल फिर रहे होते मुतमइन्नीना इत्मीनान के साथ, आप पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं, तोए मीम हमजा नून इसका रूट है, और चराग की लौ का मोमबत्ती की आग का बिल्कुल सीधा रहना, उसका मुतजलजल ना होना, तो इस तरह ये दिल के इत्मीनान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा कि जमीन में फरिश्ते रह रहे होते, इत्मीनान से चल फिर रहे होते, मजे की जिंदगी बसर कर रहे होते, तो फरिश्तों के पास किसको रसूल बनाकर भेजा जाता, लनज़लना अलबत्ता हम उतारते अलैहिम इन पर मिनस समाई आसमान से, तो अलबत्ता इन फरिश्तों पर हम आसमान से किसको रसूल बनाकर भेजते, मलाकर रसूला। तो क्योंकि फरिश्ते थे, फरिश्तों की आबादी थी, फरिश्ते रह रहे थे, तो रसूल भी जो है फरिश्ते ही को बनाकर जो है वो भेजा जाता, किसी फरिश्तों को ही उनके लिए पैगंबर बनाकर जो है वो भेजा जाता। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि पैगंबर का काम जो है वो सिर्फ जो है वो पैगाम को सुना देना नहीं है बल्कि इसलाह करना है, इंसानी जिंदगी की तामीर करना है, इंसानी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर जो है वो जारी करना है, इंसानी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर तामीर करना है। अब अगर जमीन में इंसान बस रहे थे तो अल्लाह ताला ने इंसानों को रसूल बनाकर भेजा, इंसानों को इंसानों की इस्लाह के लिए रसूल बनाकर भेजा। अगर फरिश्ते रह रहे होते तो अल्लाह ताला फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजता, क्योंकि बेहतर यही था। अगर इंसानों के लिए फरिश्ते भेजता तो इंसान ये कहते कि ये तो फरिश्ते थे जिन्होंने अमल करके दिखा दिया, हम तो इंसान है, ये हमारे मसाइल नहीं समझ सकते। और अगर फरिश्ते होते और इंसान रसूल बनाकर भेजा जाता तो फिर फरिश्ते कहते कि हम तो फरिश्ते हैं, इंसान हमारे मसाइल क्या समझे। तो इंसान का रसूल होना कुफार और मुशरिकीन के लिए सख्त ताज्जुब की बात थी। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमारे जैसा इंसान जो हमारी तरह चलता फिरता है, खाता पीता है और बीवी बच्चे रखता है, तो वो रसूल कैसे बन जाए। तो अल्लाह ताला ने बताया कि जब जमीन में इंसान बसते हैं तो हदायत के लिए रसूल भी इंसान नाजिल होंगे, और जब गैर इंसान रसूल होंगे तो वो इंसानों की हदायत का फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। और अगर जमीन में फरिश्ते बसते तो अल्लाह रसूल भी इनके लिए यकीनन जो है वो फरिश्ते ही भेजता। कुल कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफी है। इन्नहू कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदों के हाल से खूब वाकिफ है और वो सब कुछ देख रहा है। अब यहाँ पर जो है उनके एतराज का जवाब दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें हमारी तरफ से जो है वो ये बात बता दीजिए, आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे ये बात कह दीजिए कि रिसालत और नबुवत की वाज़े दलाइल आ जाने के बाद, तमाम शुबहात के दूर हो जाने के बाद भी अगर ये नहीं मानते, अगर ये ईमान नहीं लाते, आखिरी बात बस इनसे कह दे और वो क्या है, कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम, के अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है वो काफी गवाह है। किस चीज का, ये जो तुम इख्तलाफ कर रहे हो ना, अल्लाह जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह जानता है कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास वही आता आती है, और फिर भी तुम इनकार करते हो, तो ठीक है मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह ही फिर इस चीज का फैसला करेगा। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, और वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। अल्लाह को सब पता है कि लोग पैगंबर का इनकार किस तरह से कर रहे हैं और पैगंबर जो है किस तरह से उनको जो है वो समझा रहा है। फमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युदलिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूने, यहाँ पे हदायत और गुमराही का कानून बयान किया जा रहा है। फमन यहदिल्लाहु, और जिसको अल्लाह हदायत दे, फहुवल मुहतद, वही हदायत पाने वाला है। इसके माने ये हैं कि अल्लाह उसी को राह रास्त पर लाता है जो राह रास्त पर आना चाहता है, और जिसको अल्लाह लाता है वही राह रास्त पर आता है। वमन युदलिल, और जिसे अल्लाह बेराह कर दे, गुमराह कर दे, फलन तजिदा लहुम औलिया अमिन दूनी, तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए कोई हामी और मददगार नहीं हो सकता। तो हदायत जो है ना, किसी को जबरदस्ती नहीं मिल सकती। रही बात दुनिया की, दुनिया के माल की और दुनिया की दौलत की, तो अल्लाह अपनों को भी देता है, ईमान लाने वालों को, और काफिरों को जो गैर हैं उनको भी देता है। और रही बात हदायत की, तो अल्लाह उन्हीं को देता है जो कि हदायत जो है चाहते हैं, और जो हदायत नहीं चाहते तो अल्लाह उनको जो है हदायत से महरूम कर देता है। तो यहां पर हदायत और गुमराही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कानून बयान किया है कि जिसे अल्लाह हदायत देता है वही राह रास्त पर आना चाहता है, और अल्लाह किसे देता है, जो खुद चाहता है, जो खुद नहीं चाहता तो अल्लाह भी उसको हदायत जो है वो नहीं देता। और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो उसके सिवा ऐसे लोगों का कोई हामी और मददगार नहीं है, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। कोई उनका शरीक, उनका माबूद जो है उन्हें पकड़कर सिराते मुस्तकीम पर नहीं चला सकता, उनके दिल को नहीं बदल सकता। वरना शुरुहुम यौमल कयामती अला वजूहिहिम, और इन लोगों को हम कयामत के दिन जो है वो खींच कर लाएंगे। वरना शुरू हम इनको इकट्ठा करेंगे कयामत के दिन, अला वजूहिहिम इनके चेहरों के बल, औंधे मुंह, उमियन उमियन व बुकमऊ व सुम्मा मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। तो औंधे मुंह जब खींच के लाएंगे तो इनका हाल क्या होगा? उमियन अंधे, बुकमन गुंगे, वसुमन और बहरे। मावाहुम जहन्नम उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा खबत जब कभी धीमी होने लगेगी, जहन्नुम की आग जब कभी धीमी होने लगेगी, जिदना हम सईरा तो हम इसे और ज्यादा भड़का देंगे। अब यहां पर उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने दुनिया में आंखें और कान और जबान ये सब होने के बाद जो है हदायत के लिए इनका इस्तेमाल ना किया, अल्लाह की निशानियां देखी, अल्लाह के पैगाम को देखा सुना, और लेकिन ये कि उसको कबूल ना किया, अंधे गूंगे और बहरे बनकर रहे। तो फरमाया कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, मावाहुम जहन्नम, तो इन्हें जो है वो जहन्नुम के अंदर जो है वो गिराया जाएगा, इन्हें जहन्नुम के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। और प्यारी बहनों, ये इंसान की जो है वो बेबसी का जिक्र किया जा रहा है, नाफरमानी के अंजाम का जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि ये ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास जो है ठिकाने के तौर पर जो है वो जहन्नुम होगी। और यहां पर जो है मावा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, मावा, आप ये लफ्ज पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसका रूट है आवा, हमजा वो या पनाह लेना, अलिफ वो या पनाह लेना, आवा आबाद करना, और मावा जो के पनागा है। तो उनकी जो पनागा है वो क्या होगी? उनकी लिए जहन्नुम होगी। और जहन्नुम क्या है? ये अल्लाह के नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर उनका ठिकाना होगा। अच्छा, जहन्नुम की कैफियत का जिक्र किया जा रहा है कि जहन्नुम की कैफियत क्या होगी, कि उसके अंदर आग भड़क रही होगी। और जहन्नुम की आग दुनिया की आग की निस्बत जो है 69 दर्जे ज्यादा है। अब और जहन्नुम की आग की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, नारुल्लाह, नारुल्लाहिल मुकदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, ये आप पढ़ती है ना 30वें पारे में भी। तो ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। और यहां पर खबत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और खबत जो है इसका रूट है खा बा वो, इसके मानी है धीमा होना, बुझने लगना। अब यहां पर जो है वो कहा जा रहा है कि जब जहन्नुम की आग जो है वो धीमी होने लगेगी, जहन्नुम की आग जब बुझने लगेगी, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? जिद ना हम सईरा, तो इस आग को और ज्यादा जो है वो भड़का देंगे, उसको और ज्यादा जो है वो तेज करेंगे। अब आप देखें कि आग के बुझने के लिए कुरान में खबर खमादा लफ्ज भी आया है, खमादा, खा मीम दाल, आग के मदम पड़ने को कहते हैं, जिससे शोला खत्म हो जाता है मगर अंगारा नहीं बुझावा। और खा बा वो जो है इसके मानी है कि आग का शोला अफसुरदा हो जाना, कोयला या अंगारा पर राख का पर्दा चढ़ जाना, ये दरमियानी सूरत है। तो यहाँ पे उसका जिक्र किया जा रहा है। और सईरा के मानी क्या होते हैं? सीन आइन रा, आग का जलना, भड़कना, बुलंद होना। आपने सूरत अल बकरा में वकदा लफ्ज पढ़ा था, मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौकद नारा फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 17। तो औकदा या वकदा, इसके मानी होते हैं आग का भड़क उठना। लेकिन ये जो सईरा है ना, सीन ऐन रा, ये आग के भड़कने का जो है वो पांचवा दर्जा है। आग का खूब भड़कना, आग का भड़कता हुआ होना, खूब तेज भड़कती हुई आग के लिए सईर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा कि आग जब धीमी होने लगेगी, शोला बुझने लगेगा, शोले पर राख सी आती है ना जब बुझने लगता है, जिदना हम सईरा, तो हम उसे और भड़का देंगे। क्यों? जालिका जजा उहुम बियन्ना कफरू, ये बदला है उनकी इस हरकत का कि इन्होंने कुफर किया। किस चीज से? भी आयाती ना, हमारी आयात से। वकालू, और वो कहने लगे, ऐजा कुन्ना इजा मऊ वरुफातन, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां होकर रह जाएंगे, वरुफातन और खाक होकर रह जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे। रुफात का जो लफ्ज है, इसका रूट है रा फा ता, रा फा ता, और इसके मानी है चूरा चूरा होना, चूरा चूरा होना। अब आप देखें कि चूरा होने के लिए, रेजा रेजा होने के लिए कुरान में सात लफ्ज आए हैं, सात लफ्ज आए हैं। एक है हशीम। हशीम जो है ये कूटी हुई खुश घास को कहते हैं। अब जब उसको आप जो है वो जब मसलेंगी तो वो भी भूस बन जाएगी ना, चूरा चूरा हो जाएगी। दूसरा है हुतामा। हुतामा नहीं है, हुतामा, तो ये भी तोड़ना मरोड़ना के लिए इस्तेमाल होता है। हर चीज जो के जो है वो रोंदी भी हो, कुचली भी हो, जैसे खुश्क नबातात। फिर है गुस्सा। गुस्सा का लफ्ज है सैलाब के पानी के झाग में फंसा हुआ कूड़ा किरकिट। अल्लज़ी अखरज अलमरअ फजअलहु गुस्सान अहवा, ये सूरत आला में आपने पढ़ा होगा। फिर इसी तरह एक लफ्ज है हबा। हा बा वो इसका रूट है और इसके मानी है गर्दो गुबार। हर चीज के उड़ते फिरते जो जर्रात होते हैं ना, वो भी चूरा चूरा होते हैं ना, उसमें मिट्टी के बारीक जरात भी होते हैं जो हवा में फैले हुए होते हैं। और पांचवा लफ्ज जो चूरा चूरा के लिए इस्तेमाल हुआ कुरान में, वो है रुफात का। राफाता, कूटी हुई चीज, वो सीधा चीज, तोड़ना कूटना, जो हड्डियां है ना, हड्डियों का बिल्कुल पुराना होकर चूरा चूरा हो जाना, रेजा रेजा हो जाना, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कहा कि जब हम सिर्फ हड्डियां रह जाएंगे, वारुफातन और चूरा चूरा हो जाएंगे, आइन्ना लमबसूना खलकन जदीदा, तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा। और ये यहाँ पर जो है वो लोग जो इनकार करते थे, उनका इनकार, उनका अंजाम, उनका एतराज, सब चीजें जो है वो पेश की जा रही हैं। और आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ध, क्या इनको ये ना सूझा, क्या इन लोगों ने ना देखा, क्या ये लोग नहीं देखते, अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ध क़ादिरुन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम, क्या इन लोगों ने गौर ना किया, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि जो है वो जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। अब आप देखें कि आसमान और जमीन का पैदा करना कितना मुश्किल है ना, कि जिस अल्लाह ने आसमानों जमीन को पैदा किया है, कादिरुन, वो कुदरत रखता है, अन यखलुका मिस्लहुम, कि वो इन जैसों को पैदा करते। वो इस आसमान और जमीन का पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, तो जो रब आसमान और जमीन को पैदा कर सकता है, तो इंसानों को पैदा करना अल्लाह के लिए फिर क्या मुश्किल है। तो जो उनका शुबा था उसको रद्द किया जा रहा है कि तुम्हें जिंदगी बाद मौत पर हैरत क्यों है, अल्लाह तो कादिरुन कादिर है अला अन यखलुका मिसलहुम कि वो तुम जैसों को पैदा कर दे। वजअल लहुम अजलन ला रैब फी, वजअल लहुम और अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी है इनके लिए अजलन एक मुद्दत, ला रैब फी जिसके आने में कोई शक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, उसके आने में कोई शक नहीं। फअबज़्ज़ालिमून इल्ला कुफूरा, मगर जालिमों को इसरार है कि वो इनकार ही करेंगे। फअबा पस इनकार किया, जालिम कौन है, कुफर करने वाले शिर्क करने वाले अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकार किया। तो किन लोगों ने इनकार किया, फअबज़्ज़ालिमून पस इनकार किया जालिमों ने इल्ला कफूरा मगर नशुकरी। तो उन्होंने जुल्म करने वालों ने इनकार और नशुकरी के अलावा और तो कोई काम किया ही नहीं, बस यही करते थे। अब आप देख लें कि इनकार के लिए कुरान में चार लफ्ज हैं, और अबा जो है इसके मानी होते हैं कि किसी बात को तस्लीम ना करना, किसी बात को कबूल करने से इनकार करना, अड़ जाना, ना मानना, तस्लीम ना करना। तो इन्होंने जो है वो इनकार किया, और ये जो कुफूरा है ना ये भी इनकार करना है, कुफूरा जो है ये भी इनकार करना है, और ये इनकार करने का आखिरी दर्जा है, आखिरी दर्जा है कि इस तरह से इनकार करना कि इनकार करते हुए हकीकत जो है उस पर पर्दा डालना, उसको छुपा देना। तो ये ऐसे जालिम हैं कि इनकार भी करते हैं और उसके साथ जो है हकीकत पर पर्दा डालते हैं। तो पहला दर्जा है अबा और चौथा दर्जा है कफारा कि हक पर पर्दा डालते उसका इनकार करना। तो यहाँ पे पहला दर्जा अबा भी आ गया और फिर साथ ही कुफूरा भी आ गया। और आज के सबक की आखिरी आयत है, कुल कह दीजिए लो अन तुम, अगर तुम हो तमलिकूना खजाइना रहमत रब्बी, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो लो अन तुम अगर होते, तमलिकूना तुम मालिक होते, खजाइना रहमत रब्बी मेरे रब की रहमत के जो खजाने हैं अगर वो तुम्हारे कब्जे में होते, अगर तुम उसके मालिक होते, इजन उस वक्त लअमसक तुम खशियत अल इन्फाक, तो तुम खर्च होने के अंदेशे से जरूर उनको रोक लेते। ला अलबत्ता, और अमसक तुम जो है इसका रूट है मीम सीम काफ, इसके मानी होते हैं कि किसी चीज को रोकना, उसकी हिफाजत करना। दो चीजें इसमें पाई जाती हैं, जैसे कोई चीज पहले से मौजूद हो उसको पकड़ लिया जाए और वो चीज किसी को ना दी जाए, उसकी हिफाजत की जाए। पीछे आपने औरतों के बारे में पढ़ा था ना कि इमसाकुन या तो उनको रोक लो और तसरीहुम बिल एहसान, या तो उनको अच्छे तरीके से रुखसत कर दो या उनको रोक दो। तो वहां पे आपने इमसाक का लफ्ज पढ़ा था, तो यहाँ पे है ला अमसक तुम, तो ये जरूर बा जरूर उसको रोक लेते। तो अल्लाह की रहमत के जो खजाने हैं उनको क्यों रोकते ये लोग, खशियत अल इन्फाक कि अगर खर्च करेंगे तो खर्च करके कहीं खत्म ना हो जाए। तो रब की रहमत के जो खजाने हैं अगर ये इसके मालिक होते तो किसी को भी ना देते। अच्छा, यहाँ रब की रहमत से क्या मुराद है, इसके एक मानी जो है वो नबूवत के किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं अगर इनके पास जो है नबुवत होती तो ये किसी को भी ना देते कि कहीं इसमें किसी और का हिस्सा ना हो जाए। इसके दूसरे मानी जो हैं वो जैसे खजानों के हैं, अल इन्फाक जैसे खजाने हैं कि उनको खर्च किया जाए। तो खशियत अल इन्फाक के मानी है कि इस खौफ से कि अगर खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ये लोग फकीर हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के खजाने तो कभी खत्म होने वाले नहीं, लेकिन इंसान चूंकि बखील है ना, इसलिए इंसान जो है वो खर्च करते हुए जो है वो डरता है। तो ये लोग जो हैं ये भी इन्फाक करते हुए डरते हैं। वकानल इंसानु कतूरा, वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाकया हुआ है। कतूरा जो है काफ तारा, ये जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है तो उसको कतूरा कहते हैं, स्याही को कतूरा कहते हैं। अब आप देखें कि लकड़ी जलती है और वो जो धुआं सा निकलता है तो वो तो बहुत ही हकीर सा होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। तो इसी तरह जो तंग दिल होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, उनके लिए कतूरा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि ये लोग जो है क्या करते हैं कि ये लोग जो हैं ये बड़े तंग दिल हैं, ये खर्च होने के अंदेशे से अपने हाथों को रोक लेते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। हालांकि चीजें अगर अल्लाह के रास्ते में दी जाती हैं तो घटती नहीं है, बढ़ती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रसूल बनाया गया तो अहले मक्का बड़े नाराज थे, वो दुश्मनी करने लगे कि इनको क्यों रसूल बनाया गया, मक्का के सरदारों में से किसी को रसूल जो है वो क्यों नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रसालत है ना, इसका फैसला अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे नबी बना दे। और अगर तुम में से किसी को जो है नबुवत और रसालत दे दी जाए कि तुम जिसको चाहो बना लो, तो तुम क्या करोगे, किसी को भी नहीं दोगे, बकील बनकर रह जाओगे। तो इसकी एक तफसीर जो है नबुवत की गई है, दूसरी तफसीर जो है वो वैसे ही जो है वो अल्लाह के रास्ते में देने की है, जो अल्लाह के खजाने हैं। तो यहाँ पर जो है क्या मुराद है कि अल्लाह के रास्ते में देना। लेकिन अहले मक्का रसूल अल्लाह की नबुवत का इनकार करते थे और इसके साथ वो बखील भी थे। तो यहाँ पर जो है इनकी ये हालत जो है इसका जिक्र किया जा रहा है कि इंसान जो है बड़ा ही बखील जो है वो वाकया हुआ है। तो ये थी सूरत बनी इसराइल की आयात, और इसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमसे क्या चाहते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि हमें असराफ से भी मना किया गया है और उसके साथ जो है वो तबजीर से भी मना किया गया है। और असराफ, तबजीर और कतूरा, इन सब में क्या फर्क है? आप ये सारी बातें जो हैं वो पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ आप एक बात समझ लें कि कतूरा तो कंजूसी है ना, और रही बात इसराफ की, तो जरूरत के कामों में जरूरत से ज्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं, जैसे अपने खाने पीने लिबास में ज्यादा खर्च करना। बाज लोग कहते हैं कि हराम कामों में खर्च करने को इसराफ कहते हैं। तबजीर पहले ही मैं बता चुकी हूं, बा दाल रा, इसके असल मानी बीज के होते हैं। जैसे किसान खेत में जमीन में जो है बीज फेंकता है तो इधर उधर हर तरफ बीज ही बीज गिर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह तबजीर के मानी है ऐसे कामों में खर्च करना जिनका जिंदगी की जरूरत से कोई ताल्लुक ना हो, जैसे फखर के लिए, रिया के लिए, गुनाह के कामों में खर्च करना। तो तबजीर जो है ये इसराफ से भी ज्यादा बुरा काम है। आपने पढ़ा था ना तबजीर के बारे में, ये आयत नंबर 27 सूरत बनी इसराइल में, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। और मैं आपको इसराफ और तबजीर की एक मिसाल देना चाहती हूँ कि मसलन एक हॉल है ना जैसे, और उसके अंदर जो है पंखे चल रहे हैं। अब आप देखें कि जैसे क्लासरूम है उसमें भी पंखे चलते हैं, तो आपको चार पंखों की जरूरत है लेकिन छह पंखे चल रहे हैं, तो चार से आप फायदा उठा रहे हैं और दो फजूल चल रहे हैं, वहां कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो ये जो दो पंखे हैं ना, ये क्या है? ये इसराफ है। और चार से फायदा उठा रहे हैं ये जरूरत के मुताबिक है, दो एक्स्ट्रा हैं, तो ये दो जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं ये इसराफ है। अच्छा, अगर जो है आप क्या करती हैं, आप क्लासरूम से निकल जाती हैं और छह के छह पंखे चल रहे हैं, आप कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो इसको तब्जीर कहते हैं, क्योंकि कोई भी मौजूद नहीं है और अब जो पंखे चल रहे हैं उनकी सारी जो लाइट है, जो बिजली है, जो ठंडक है, हवा है, अब वो जाया हो रही है, ये तब्जीर है। तो इसराफ क्या है? जरूरत से ज्यादा खर्च करना। और तब्जीर क्या है? तब्जीर के मानी ये है इस तरह से खर्च करना, ऐसे कामों में खर्च करना जिसका जिंदगी की जरूरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नमूदो नुमाइश भी हो सकती है, और ऐसे ही जैसे आप एक कमरे में बैठी हैं, सारे घर की लाइटें ऑन है, आपने कौन सा बिल देना है? बिल तो आपके महकमे वालों में से किसी ने देना ना, अब मालिक मकान ने देना, आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। तो एक कमरे में आप मौजूद हैं लेकिन लाइट सारे घर की ऑन है, तो बाकी जगह सब क्या है? इसराफ हो रहा है। आप घर में मौजूद नहीं है, पूरे घर की लाइटें ऑन है, तो ये क्या है? ये तब्जीर है। अब यहाँ पे क्या है? कतूरा, कि इंसान इतना कंजूस है कि वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता ना। तो ये सारी जो बातें हैं इसकी रोशनी में आप अपना जायजा लें और मुहासबा करें कि आप कहाँ पे खड़ी हैं और आपको क्या छोड़ना है, क्या करना है, ताकि जिंदगी जो है वो अल्लाह की अतात में जो है वो ढल जाए, और अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपनी जबान का, अपने दिल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। इसलिए कि ये आंखें, ये कान, ये जबान, ये जिस्म के अज़ा जो हैं, इनका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि हम इनके जरिए से अल्लाह की अताअत करें। वरना ऐसे लोग जो दुनिया के सारे काम अपने जिस्म के अज़ा से करते हैं, नहीं करते तो अल्लाह की बंदगी नहीं करते, कयामत के दिन ये अंधे, बहरे, गूंगे जो हैं उठाए जाएंगे, इनके पाओं की बजाय इनके चेहरे के बल पर इनको खड़ा किया जाएगा और इनको चलने के लिए कहा जाएगा कि अब चलो, क्योंकि दुनिया में ये उल्टा चलते थे ना। और ये सही बुखारी की रवायत भी है, सही बुखारी की रवायत है। अभी आपने ये आयत नंबर 97 पढ़ी ना, कि नाफरमानों को हम कयामत के दिन औंधे मुंह इकट्ठा करेंगे। सहाबा ने इससे बड़ी हैरत का इजहार किया कि औंधे मुंह किस तरह हशर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अल्लाह ने इनको पैरों से चलने की कुव्वत अता की है, वो इस बात पर भी कादिर है कि उन्हें मुंह के बल जला दे, इन्हें मुंह के बल चला दे। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कुदरत रखता है, जिंदा को मार दे, मार को मारे हुए मरे हुए को जिंदा करके खड़ा कर दे, जब चाहे तो मौत दे दे, जब चाहे तो कयामत आ जाए। वो जो कुछ चाहे जब चाहे करे, वो बादशाह है, वो हाकिम है, वो रब है, वो खालिक है, वो समी है, वो बसीर है। तो फिर करना क्या है? वो समी है तो डरे इस बात से कि अल्लाह सारी बातों को सुनता है, वो बसीर है तो डरे इस बात से कि अल्लाह की मैं नजरों में हूं, वो खालिक है तो उसकी मखलूक बन जाइए, हाकिम है तो महकूम बन जाइए, और फिर अल्लाह की बंदगी और अतात को अपना वतीरा बना लें। सारी मुश्किलात और सारी परेशानियों का एक ही हल है, और वो क्या है? कि गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह की बंदगी की तरफ जो है वो रुजू किया जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।